με τη άνοιξη να συμμαρτήσω τον έτρα ασθενή. Καρθάνι μαντρ λέλα γιατνα καρίνα. Charila dakshina puri tare diksha dina Saradhani mantra lela yatana karina Charila dakshina puri tare diksha dina Karathani mantra laila yatna karina Chalila dakshina puri tare diksha dina Karathani mantra laila yatna karina Chalila dakshina puri tare diksha dina Karathani mantra laila yatna karina Chalila dakshina puri काफी चर्चा थी कि एक ही दिन में जो है माधवेंद्रपुरी ने इतने बड़े जो है आयोजन को जो है अंजाम दिया और हजारों लोगों ने भाग लिया। उसके बाद प्यार संख्या 108 में बताया जा रहा है कि माधवेंद्रपुरी जी को एक सपना आया जिसमें गोपाल जी ने कहा कि आप जो है तुरंत मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं कि तुम कहां जाओ बंगाल में जाओ और मेरे लिए वहां से चंदन लेकर आओ मेरे शरीर पर लगाने के लिए। तो ये स्वप्न में माधवेंद्रपुरी को दिखे भगवान स्वयं गोपाल जी और उन्होंने एक ऑर्डर दिया उनको कि आप चंदन लेकर आइए क्योंकि मेरे को काफी समय से जमीन पर पड़े रहने जमीन के अंदर रहने से गर्मी की वजह से मेरा शरीर जो है जल रहा है। और उन्होंने कहा कि मुझे कोई और दिखता नहीं है कि कोई और ये काम कर सकता है इसलिए तुम लोग तुम ही जाओ। तो भगवान जो है अपने भक्तों के स्वप्न में आते हैं और विशेष आज्ञाएं भी देते हैं, तो और इस तरह के विशेष स्वप्न हमारे भक्तों को भी आते हैं, है ना, लेकिन बिना आज्ञाओं के होते हैं। लेकिन माधवेंद्रपुरी को विशेष स्वप्न में दिखे और अपनी विशेष अपनी स्थिति बताई और उसके बाद चंदन के लिए भी आज्ञा दी। अब जो है माधवेंद्रपुरी ने क्या किया, इस आज्ञा को पाते ही उन्होंने उड़ीसा उस तरफ जाना शुरू कर दिया, उड़ीसा की तरफ। अब भगवान की आज्ञा को पूरा करने के लिए चल पड़े। रास्ते में जो आज की प्यार है, उन्हें पता चला कि वो जो है इस श्लोक में जो है शांतिपुर पहुंचे। इससे पहले वाले श्लोक में प्यार में शांतिपुर रास्ते में था और वहां पहुंचने के बाद अद्वैत आचार्य के घर पहुंचे, जहां पर शांतिपुर में हम लोग भी जाते हैं साल में एक बारी। शांतिपुर में बहुत सुंदर फेस्टिवल होता है, उसका नाम है शांतिपुर फेस्टिवल। इस शांतिपुर फेस्टिवल में ऐसा नहीं कि बहुत शांति होती है या वहां शांति बैठती है, वहां पर बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है और हजारों लोगों के लिए वहां पर इस्कॉन के द्वारा खिचड़ी का प्रसाद बनाया जाता है। और वहां पर लगभग दूर दूर से हम लोग, जैसे जो पता चला माधवेंद्रपुरी जो है अन्नकूट फेस्टिवल कर रहे हैं, तो दूर दूर से गांव के लोग वहां पर आ गए उसको सेलिब्रेट करने के लिए अपने घरों से जो है उपहार लेकर। तो हम वहां पर जाकर देख सकते हैं कि किस प्रकार गांव गांव से लोग आते हैं। एक वो छोटा सा गांव है, लेकिन उस शांतिपुर फेस्टिवल में जब हम एंटर करते हैं तो वहां पर हमारे भक्त लोग खिचड़ी का प्रसाद भोग बना रहे होते हैं और जो भगवान को भोग लगता है उसके बाद बांटने की बारी आती है। हम देखते हैं ज्यादा लोग तो है ही नहीं, शुरू में ज्यादा लगने लगते हैं, लेकिन जब बांटना शुरू करते हैं तो शाम हो जाती है और उसके बाद हमें पता चलता है कि हमारी ट्रेन का टाइम हो रहा है, अगले टाइम से निकलना भी है, तो भक्त लोग निकल पड़ते हैं। मतलब इतने लोग आते हैं कि जो है अगर आप देखेंगे वहां पर इतनी बड़ी कई दो तीन हौदियां बनी हुई हैं जिसके अंदर खिचड़ी बना बना के डालते रहते हैं। और उस हौदी से खिचड़ी को निकालने का जो तरीका है वो जैसे कि किसी भी हौदी से पानी निकालने का होता है, उसमें 2 फीट की या 2 इंच की जो वो नहीं है, पाइपलाइन नहीं आ रही, उसमें इतना बड़ा होल है और खिचड़ी जब ऊपर भर देते हैं तो उसमें से बाहर निकलती है। तो भक्त लोग क्या करते हैं, जिससे मिस्त्री लोग काम करते हैं ना, क्या होता है वो पावड़ा या जो भी होता है, एक वो लंबे वाला भी होता है ना बेलचा, तो वो बेलचा जो है उसके मुंह पर लगा के रखते हैं ऐसे करके। और लोग आते हैं भक्त लोग, वो अपनी बाल्टियां ले लेकर आते हैं और बाल्टी यूं रखते हैं उसके नीचे, वो बेलचा उठाते हैं, सारी खिचड़ी बाहर निकलती है और तुरंत बेलचा लगा देते हैं और वो गर्मा गर्म खिचड़ी होती है। हमें याद है पिछली बार शांतिपुर में हमने अपना पैर जलाया था वो निकाल रहे थे, बहुत खट्टे खट्टे लोग वहां थे, रशिया से डिवोटी थे, वो बाल्टी रखते थे उठा देते थे, तो गलती से मैंने कहा मैं भी करता हूं कुछ, तो हमें तो इतनी वो नहीं था एक्सपीरियंस, बट वो कर रहे थे तो कुछ गर्म गर्म खिचड़ी हमारे पैर पर गिरी, किसी और के पैर पर भी गिरी। तो उस हौदी में इसके अलावा बड़े बड़े कढ़ाए होते हैं, वो कढ़ाए ऐसे है कि 3-4 लोग, जैसे आप लोगों के घर में आपने देखा होगा कई बार 5-10 बच्चों को स्नान कराने के लिए टब होता है, देखा है पानी भर के रखते हैं जिसमें, वो तो छोटा होता है, वो बहुत बड़ा कढ़ाया है, मतलब जैसे इसमें 8-10 लोग यहां बैठे हैं तो वो सब लोग उसके अंदर आ सकते हैं, मतलब इतना बड़ा कढ़ाया। तो कई बार जब हम लोग नर्क की यात्रा के बारे में सोचते हैं तो वहां पर भी जो है गरम गरम खोलते हुए तेल में लोगों को डाला जाता है। ये वो लोग हैं जिन लोगों ने अन्य जीवों को मारकर खाया है और इनको वहां पर फ्राई किया जाता है ऊपर। तो उसमें लिखा है कि ये लोगों को, क्योंकि यातना शरीर प्राप्त होता है तो यातना शरीर के द्वारा इन लोगों को दर्द पूरी होती है लेकिन मृत्यु नहीं होती इनकी। इनको काट दिया जाता, फाड़ दिया जाता, लटका दिया जाता, ऐसे ऐसे वृक्षों पर चढ़ाया जाता है जिन पर बहुत नुकीले कांटे निकले हुए हैं। कांटे ऐसे नहीं होते कि मतलब हमारे वेग से टूट जाएं, वो इतने बड़े बड़े कांटे होते हैं और ऊपर चढ़ाने के बाद रस्सियों से उसको बांधा होता है। ऊपर जब व्यक्ति चढ़ जाता है तो उसको खींचा जाता है नीचे, तो वो जब नीचे खींचा जाता है तो आप सोच सकते हैं व्यक्ति कांटों से उलझता हुआ नीचे आए तो उसकी क्या हालत होगी। तो फट फटाकर नीचे आता है, पूरा शरीर उसका लहू लुहान हो जाता है और उसको फिर से ऊपर चढ़ाया जाता है। तो मरता नहीं है लेकिन नाना प्रकार की यात्रा में उतने बड़े बड़े कढ़ाए जो है वहां पर होते हैं। और उस शांतिपुर फेस्टिवल में हजारों भक्त जो हैं प्रसाद पाते हैं और काफी भक्त लोग सेवा करते हैं। तो बाल्टियां जो हैं, जिस तरह आपने देखा होगा जब कभी बड़ी बिल्डिंग बनती है तो सब आजकल तो दूसरे ढंग से बनती है कि एक बहुत बड़ा उसके अंदर वो लगाया होता है,
उससे सामान ऊपर नीचे जाता है। बट पहले क्या होता था कि एक मिस्त्री दूसरे को तसला पकड़ाता था, दूसरा तीसरे को पकड़ाता था, इस तरह करते करते सामान ऊपर जाता था। इसी तरह शांतिपुर में भी सारे के सारे भक्त लोग, सारी दुनिया से आए भक्त लोग, अलग अलग वेशभूषाओं में, अलग अलग रंग रूप, और वो क्या करते हैं, बाल्टियां इस प्रकार पकड़ते हैं, एक हाथ से दूसरे ने पकड़ाए, दूसरे को तीसरे ने पकड़ाए, तीसरे चौथे को पकड़ाए, और जहां पर की बटनी है तो देखिए कितनी तेजी से खिचड़ी बट रही है, बाल्टियां खाली हो रही हैं कि वो हाथ रुकते नहीं है बाल्टी पकड़ाने में। तो ये वो शांतिपुर जगह है। तो शांतिपुर फेस्टिवल में आप लोग भी जाइएगा कभी, अगर मायापुर धाम जाए। श्री श्री राधा राधिकरण भगवान की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, हिताय गौर विमल। तो ये वो शांतिपुर है जहां पर कि अब माधवेंद्रपुरी पहुंचे हैं। और जैसे ही माधवेंद्रपुरी को अद्वैत आचार्य ने देखा तो वो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, और तुरंत जो है उनको प्रणाम इत्यादि किया, खुश हुए, और फिर उनसे आग्रह किया कि वो उन्हें दीक्षित करें। तो फिर माधवेंद्रपुरी ने वहां पर उन्हें दीक्षित किया, और उसके बाद वो आगे चल पड़े, कहां, चंदन लेने के लिए। तो आज के श्लोक में बता रहे हैं कि वो चंदन लेने के लिए निकल पड़े फिर से साउथ इंडिया की उस तरफ, साउथ इंडिया पुरी की तरफ। और प्रपट में प्रभुपाद जी कह रहे हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी कमेंट करते हैं कि अद्वैत आचार्य ने जो दीक्षा दी ली जो माधवेंद्रपुरी से, तो ये समझना चाहिए कि उस समय माधवेंद्रपुरी जो है हमारी उसी माधव संप्रदाय से आ रहे हैं और एक सन्यासी हैं। तो आगे वो बात कर रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु का यही ऑर्डर था, और उन्होंने बताया कीवा विप्र कीवा न्यासी शूद्र के निर्णय एक कृष्ण तत्ववेता सही गुरु है। कि अगर एक व्यक्ति हो सकता है वो ब्राह्मण हो, सन्यासी हो, शूद्र हो, या किसी और बैकग्राउंड का हो, लेकिन अगर वो भगवान को जानने के विज्ञान को पूरी तरह जानता है, कृष्ण तत्ववेता है, तो व्यक्ति गुरु बनने के लायक है। ये मध्य लीला में ही 8वें अध्याय के 128वें श्लोक में कोट किया है। और तो पंचरात्र विधि के द्वारा इस चीज को जो है बताया जा रहा है कि माधवेंद्रपुरी ने जो है उनको दीक्षित किया। उसमें बताया गया था कि पहले तो हाउस होल्डर जो है, ब्राह्मणस जो है, वही केवल इनिशिएट कर सकते हैं, दूसरे लोग नहीं। लेकिन जब एक व्यक्ति जो है इनिशिएट होता है तो वो ब्राह्मण भी होता है, उसके अंदर ऐसी क्वालिटीज होती हैं। और तो यहां पर पूरा उसका डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं ब्राह्मण के बारे में। लेकिन पंचरात्रिक विधि और इन सबके द्वारा जो है जब दीक्षित होता है व्यक्ति, तो ब्राह्मण क्वालिटीज जब डेवलप करता है तो उसको डीटी वर्शिप जैसी सेवाओं में लगाया जाता है, ताकि वो व्यक्ति अपने आप को और अधिक शुद्ध कर सके और भगवान को ज्यादा अच्छा समझ सके। तो इस पूरे प्रपट में जो है एक आध्यात्मिक गुरु और एक सन्यासी के विषय में बता रहे हैं कि किस प्रकार जो है एक स्पिरिचुअल मास्टर, एक आध्यात्मिक गुरु किसी भी लेवल के व्यक्ति को, जो किसी भी कैटेगरी का है, चाहे वो शूद्र हो चाहे कुछ भी हो, अगर वो गुरु परंपरा से है और सन्यासी है, तो वो अगर किसी भी व्यक्ति को इनिशिएट करता है, और वो व्यक्ति चाहे किसी भी आश्रम में स्थित हो, लेकिन अगर उसके अंदर ऐसी क्वालिटीज हैं कि वो कृष्ण को तत्व से जानना चाहता है, तत्व से जानता है, तो वो भक्त बनने के या ब्राह्मण बनने के, सन्यासी बनने के भी लायक है। यहां पर इसके बाद हम लोग आगे कुछ प्रयास को लेंगे। जब वो माधवेंद्रपुरी उस तरफ गए तो बीच में रेमुणा पड़ा। रेमुणा एक वो जगह है जहां पर कि इस समय माधवेंद्रपुरी जी की हमें वहां समाधि भी मिलती है, उनकी भजन कुटीर सॉरी, और वहीं पर एक आचार्य और हैं रसिकानंद प्रभु, उनकी वहां पर समाधि मिलती है। तो रेमुणा में ये मंदिर बहुत फेमस है, जो कि लगभग भुवनेश्वर से 150 किलोमीटर के आसपास है। यहां पर गोपीनाथ जी के विग्रह है। ये गोपीनाथ जी का विग्रह है, जिस तरह हम सोचते हैं कि जैसे राधिकर्मन के विग्रह पूरे हैं, इस तरह नहीं है। ये एक स्टोन में काव डिटीज है, और उसमें जो है कुछ और भगवान की सुंदर सुंदर लीलाओं का दर्शन भी मिलता है, ग्वाल बालों के साथ और गायन चराते हैं भगवान का, और कुछ गोपियों का भी। इसके साथ दो विग्रह और वहां पर पूजित होते हैं, विग्रहों में है एक मदन मोहन जी और एक राधा गोविंद जी। तो ये तीनों विग्रहों का वहां दर्शन होता है, लेकिन इसमें जो मूल विग्रह हैं गोपीनाथ जी, ये गोपीनाथ विग्रह इनको बोलते हैं खीर चोर गोपीनाथ। माधवेंद्रपुरी अब वहां पहुंच गए हैं और वहां पहुंचने के बाद भगवान का दर्शन करने के बाद भाव विभोर हुए, और उसके बाद आने वाले प्रयाग में बता रहे हैं कि जैसे वहां पर पहुंचे माधवेंद्रपुरी तो वो जो है भाव विभोर होकर डांस करने लगे, भगवान के नामों को स्वर में पुकारने लगे। रेमुने टेके ले गोपीनाथ दर्शन, कमर रूप देखिना हेला विवह मन। तो अब उन्होंने भगवान का दर्शन किया और भाव विवल हो गए। अगली चरण में कह रहे हैं, नृत्य गीता कर जग मोहन वसीला, कर कर भोगलय ब्राह्मण पूछिला। अब उन्होंने पूछा जो कि वहां के ब्राह्मण थे कि जो भगवान वहां पर हैं वो उनको खाने के लिए क्या क्या चीज ऑफर करते हैं, क्यों भाव आया। जैसे कई लोगों के घर में ड्यूटीज होते हैं और जब वो किसी के यहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि वो कितना ऑपुलेंट उनको जो है भोग ऑफर कर रहे हैं, क्या उनकी विधि है, तो पूछते हैं लोग। इसी तरह माधवेंद्रपुरी के पास भी अब एक ड्यूटीज हैं, उनका नाम है गोपाल जी, जिनको स्थापित कर चुके हैं। और ये मंदिर एक बहुत ही फेमस मंदिर है और यहां पर भी वहां के ब्राह्मण जो है भगवान को नाना प्रकार के ऑफरिंग्स करते हैं, कितनी बार करते हैं, क्या क्या बनाते हैं। तो उनके अंदर उत्कंठा हुई और उन्होंने पूछा, तो उन्होंने बोला कि सवेर सौष्ठी व देखी अनदित माने उत्तम भोग लगे इथा भजी हम उन्हें। उन्होंने कहा कि हम कई प्रकार के जो है अरेंजमेंट करते हैं, तो माधवेंद्रपुरी ने बताया कि कौन सा ऐसा जो बेस्ट फूड है जो आप इनको ऑफर करते हो। तो फिर उन्होंने बताया कि उनके हृदय में जब ये प्रश्न आया कि मैं पूछूं कि गोपीनाथ को क्या क्या ऑफर करते हैं, फिर उन्होंने बताया, उनकी किचन में गए और बताया कि क्या क्या आप ऑफर करते हो। तो उन्होंने कई चीजें बताई, जिसमें एक चीज विशेष उन्होंने बताई जो वहां पर भोग लगती है रात के समय, वो था ब्राह्मण ने बोला कि शाम के समय हम भगवान को जो है स्वीट राइस अर्थात ऐसे खीर जो है 12 कसोलों में उनको अर्पित करते हैं, जिसको कि बोला उसका इतना सुंदर टेस्ट होता है कि इसको अमृत कहा जाता है और इसलिए इसका नाम है अमृत केली। तो ये खीर का नाम है। तो जब इन्होंने सुना, उन्होंने बोला कि ये जो खीर है, इस खीर का जो है पूरे संसार भर में जो है बड़ा सुंदर नाम है, और यही खीर की वजह से गोपीनाथ जी को खीर चोर भी पूरे संसार में जाना जाता है। तो अगले प्यार में बता रहे हैं कि जब उनसे बात ही कर रहे थे कि किस प्रकार की खीर बनती है, कैसे ऑफर करते हैं, तो माधवेंद्रपुरी को दिमाग में कुछ आया, उन्होंने कुछ सोचना शुरू किया। उन्होंने कहा अगर कि थोड़ी सी राइस, ये जो स्वीट राइस है ये मुझे भी प्राप्त हो जाए, जिसको मैं टेस्ट कर सकूं कैसे बनता है, क्या स्वाद है इसका, तो मैं भी अपने गोपाल जी को इस प्रकार ऑफर कर पाऊंगा। और फिर जब उनके दिमाग में आया और आरती का दर्शन कर रहे थे उस समय, तो उनको फिर ये भी आया कि मैंने भगवान को भोग लगने से पहले जो है मैंने ये सोच लिया कि ये खीर मुझे भी स्वाद करने को मिले, तो ये बहुत अच्छा संस्कार नहीं है। तो ये सुनते ही समझते ही वो लोग, उन्होंने क्या किया, माधवेंद्रपुर ने उस स्थान को छोड़ दिया और छोड़कर चले गए। तो इसमें थोड़ा सा और कहानी को जोड़ेंगे, क्योंकि आगे प्रयास में पूरी कहानी बताई गई है। यहां पर जब उनको खीर की जो बात सुनाई दी, अब क्या था कि भगवान को जब पता चला कि मेरा एक शुद्ध भक्त माधवेंद्रपुरी यहां पर आया है और वो खीर ये जो है चाहते थे, अब यहां से चले गए हैं केवल इस भाव से क्योंकि उन्होंने पहले इच्छा ऐसी कर ली कि मेरे को खीर चाहिए भूख से पहले। तो क्या किया भगवान ने, जब ब्राह्मण ने उनको खीर ऑफर की 12 कसोलों में, है ना, तो उसके बाद क्या हुआ कि भगवान ने क्या किया, अब खीर चोर गोपीनाथ, हमने बताया ना विग्रहों के रूप में नहीं भी हैं, लेकिन फिर भी कार्व डिटीज होते हुए भी भगवान ने क्या करा, उन 12 कसोलों में से एक कसोला खीर का पर्दे के पीछे छुपा लिया। ब्राह्मण आए, जैसे कि हमारे रोज पुजारी भी ऑफर करते हैं और प्लेट्स भगवान के आगे लगते हैं और ऑफर करते हैं, उसके बाद जब समय पूरा होता है तो उठा के वापस ले जाते हैं, कभी गिनते भी नहीं कि कौन सी कटोरी गायब है। तो यकीन हमारे को पूरा यकीन रहता है कि पूरी होगी। तो जब प्लेट्स अंदर जाती हैं तो ये तो उनको पता चलेगा जो बाद में प्लेट बनाते हैं कि आज प्रसाद कम क्यों है, प्लेट एक राजभोग कम क्यों बने। तो इस प्रकार जो है वो कसोले वापस लेकर चले गए और रात्रि में स्वप्न में खीरचोर गोपीनाथ जो है उस ब्राह्मण के स्वप्न में भी आते हैं। और उसको कहते हैं कि तुम भैया, मेरा एक भक्त आया है माधवेंद्रपुरी, और उस माधवेंद्रपुरी के लिए जिसने खीर की याचना की थी, मैंने 12 कसोलों में से एक कसोला खीर का जो है छुपा के तो पीछे रख दिया था, तो आप तुरंत जाओ और वो खीर का कसोला उस ब्राह्मण को दे दो। इस समय वो ब्राह्मण इस बाजार में मिलेंगे रेस्ट करते हुए। जैसे उनकी निद्रा खुली उस ब्राह्मण की, तो स्वप्न तो था ही, तो उनको लगा कि सच हो सकता है, भाग गए। लेकिन कन्फ्यूजन होती है ना व्यक्ति को कि भाई मैंने तो 12 के 12 उठाए थे या मैंने तो सब कुछ कर दिया, लेकिन वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं, सच में भगवान ने अपने भक्त की उस याचना को पूरा करने के लिए एक खीर का कसोला छुपा के रखा होता है ना। कैसे भगवान है हमारे, जब उपस्थित थे लीलाओं के लिए तो भी खीर चुराते थे, मक्खन चुराते थे, दूध दही चुराते थे, अब विग्रहों के रूप में पूजा जा रहा है तो अब भी वही काम कर रहे हैं, है ना। तो भगवान का ये पेशा जन्म जन्म से चला आ रहा है, इसलिए भगवान को जो है कई लोग माखन चोर भी कहते हैं। जैसे एक बार हमने पहले भी बताया था कि एक व्यक्ति के सर पर लिख दिया गया था माथे पर कि तुम्हारा बाप चोर है, तो पूरी फिल्म में वो लड़ता रहा लोगों से, है ना भाई, कि भाई ऐसे क्यों लिख दिया आपने, है ना। तो बात तो ठीक ही है, अगर हमारे पिता कृष्ण हैं सबको, तो पिता तो फिर चोर ही है, सबके पिता चोर हैं फिर तो ना जी। तो उनको अगर लिख दिया, उनको समझ आ गया था किसी को, तो उसने उनके माथे पे लिख दिया कि तुम्हारा बाप चोर है। वास्तव में सबका बाप चोर है, वो चोर हैं क्योंकि वो माखन चुराते हैं, वो हृदय चुराते हैं, वो लोगों के पाप चुरा लेते हैं और नाना प्रकार के जो हैं इस प्रकार के लीला करके भक्तों के हृदयों को चुरा कर रख लेते हैं, तो इसलिए उनका नाम चोर है। तो इस प्रकार जो है उन्होंने खीर जो है अब चुरा ली, और ब्राह्मण ने जो है उस खीर को लेकर माधवेंद्रपुरी को जाकर पुकारा बाजार में, माधवेंद्रपुरी कोई है? हाँ, उन्होंने बोला मैं हूं। तो कहा कि ये खीर ये आपके लिए, कहते मेरे लिए, कहते हाँ हाँ, और स्वयं गोपीनाथ जी ने इस खीर को आपके लिए चुराया, कहते मेरे लिए खीर चुराई भगवान। और तुरंत उन्होंने उस खीर के कसोले को लिया और ऑनर किया, खाया, बहुत सुंदर बहुत टेस्टी खीर थी। उसके बाद क्या, जब खत्म भी हो गई तो भी क्या किया उन्होंने, उसको तोड़ा, उस कसेले को तोड़कर अपने कपड़े की कॉर्नर में बांध कर रख लिया, ताकि मैं अब रोज इस खीर के कसोले को जो बच्चा कुछ है उसको थोड़ा थोड़ा करके खाता रहूं, है ना। तो इस प्रकार जो है कई भक्त लोग भी हमारे यहां आते मंदिर में, जब प्रसाद मिलता तो वो भी इस भाव से कई बार प्रसाद की प्लेट भी साथ ही ले जाते कि हम जो है रोज प्रसाद को लिया करेंगे, कई बार पकड़ी जाती है बाहर जब फेस्टिवल होता है तो तो इस प्रकार जो है वो कसोले को टुकड़े कर करके उन्होंने अपने पास रख लिया ताकि मैं इसको याद कर सकूं। जैसे ही वहां पर माधवेंद्रपुरी को के पास जब खीर के कसोले गए, उनको ऑफ दिया जब, तो ये खबर हर व्यक्ति तक पहुंच गई अब कि माधवेंद्रपुरी के लिए भगवान कृष्ण ने गोपीनाथ जी ने खीर चुराई है। तो अगर ऐसी कोई चीज जब हमें कुछ हमारे साथ कुछ घटना हो तो हम तुरंत वो बताना चाहते हैं सबको, लेकिन माधवेंद्रपुरी को जैसे ही पता चला कि अब इन लोगों को पता चल गया है, अब ये लोग मेरा गुणगान इत्यादि करेंगे, है ना, तो उन्होंने क्या करा, तुरंत उस स्थान को छोड़ दिया और कहां चले गए, उड़ीसा की तरफ, अपनी तैयारी पूरी आगे करी वो लेने के लिए, क्या, चंदन लाने के लिए। तो इस प्रकार जो है वो आगे बढ़ गए। लेकिन बताया जाता है कि जब उनको वहां पहुंचना था तो वहां पर पहुंचने से पहले ही उनकी ग्लोरीज वहां पहुंच गई, सब लोगों को पता चल गया था कि एक माधवेंद्रपुरी व्यक्ति जो है इस तरफ आ रहे हैं जिनके लिए स्वयं गोपीनाथ जी ने खीर चुराई है। तो वहां पहुंचे तो उनको क्या चाहिए था, वहां पर चंदन चाहिए था। तो लगभग बताते हैं वहां पर उन्होंने चंदन लिया, कितना था वो मालूम, उसमें 38 kg और 2 किलो कपूर इत्यादि भी था, 38.5 किलो और बाकी ऐसा कुछ करके, तो लगभग 40 किलो का वेट उनके पास था। वहां के लोगों ने क्या किया, माधवेंद्रपुरी के साथ एक दो लोग और भेजे ताकि रास्ते में कोई दिक्कत तकलीफ ना आए, क्योंकि उस समय जो है कई एरियाज में जो है मुस्लिमों का राज था, तो चुंगी और इत्यादि जो टैक्सेस लगते हैं तो उसमें काफी दिक्कत आती थी, पेपर दिखाने पड़ते थे कहीं कोई व्यक्ति स्मगलिंग तो नहीं कर रहा है इस तरह की चीजें। तो इस प्रकार जो है वो गए लेकर, तो कई जगहों पे बहुत जब निकले तो बहुत आसानी से वो लेकर आ गए। रात्रि में जब वो वापस पहुंचे कहां गोपीनाथ, तो उनको लगा मुझे रात नहीं बितानी चाहिए, तो वहीं पर सो गए। अब यहां पर भगवान गोपाल जी फिर से माधवेंद्रपुरी के स्वप्न में आते हैं और क्या कहते हैं कि हे माधवेंद्रपुरी, तुम जो ये चंदन लेकर आ रहे हो, क्योंकि भगवान को भी ना अपने भक्त के ऊपर तरस आया कि भाई इतना वेट ही उठाकर ला रहे हो, और उड़ीसा और कहां वृंदावन, कितना किलोमीटर है, 2000 किलोमीटर के पास, इतना वो पैदल गए थे चंदन लेने के लिए। और जैसी आज्ञा मिली थी उन्होंने सोचा नहीं था कि कैसे होगा, सपना ही तो है, पता नहीं कल देखता हूं आएगा कि नहीं आएगा दोबारा, ऐसी बात ही सोची उन्होंने, तुरंत निकल पड़े थे। और उतना वेट 40 kg वेट उठा के भी ला रहे थे तो, लेकिन जब गोपीनाथ जी में रस के लिए रुके एक दिन के लिए रात के लिए, तो भगवान दोबारा उनको प्रकट हुए और क्या कहा कि तुम जो ये चंदन ऐसा करो कि गोपीनाथ जी के ही शरीर पे लगा दो। उन्होंने कहा गर्मी तो आपको लग रही थी, इतनी दूर भेज दिया मेरे को, गर्मी लग रही है आपको और मैं चंदन लगाऊं इनको, क्या चक्कर, समझ नहीं आया। कहते देखो इनमें और मुझ में कोई अंतर नहीं है, अगर आप ये चंदन इनको लगा दोगे तो मुझे पूरा शांति मिलेगी। देखो ठीक है, तो उन्होंने क्या किया फिर उस चंदन को घिसा और उनके शरीर पर लगभग 21 दिन तक वो चंदन का लेप गोपीनाथ जी को लगता रहा। आप अगर कभी उस मंदिर में जाएंगे तो वहां के पुजारी लोग जो हैं आपको खीर में अमृत के लिए खीर तो देंगे, साथ में वो चंदन का चंदन भी देते हैं जो भगवान के शरीर पर लगा था, जो हर साल फेस्टिवल में लगता है, तो उसका कुछ भाग चंदन का आपको मिलता है, अगर आप मांगेंगे तो मिलेगा। तो ये चंदन फिर उन्होंने उनके शरीर पर लगाया काफी समय तक, 21 दिन तक लगभग चला। और हमारे मंदिरों में इस सुंदर फेस्टिवल को मनाने के लिए चंदन यात्रा के नाम से जाना जाता है, और हर साल आप देखते होंगे यहां पर भक्त लोग बहुत मेहनत करके चंदन घिसते हैं, चंदन लाते हैं, और वो एक ऐसी सेवा है जो कि डायरेक्ट भगवान के शरीर पर लगाई जाती है। जैसे कुब्जा ने क्या किया, जो चंदन वो कंस के लिए लेकर जा रही थी और कृष्ण और बलराम को देखते ही उन्होंने बिना कुछ पूछे और डरे कि नौकरी चली जाएगी है ना, मेरे को निकाल दिया जाएगा, डांट पड़ेगी, मार दिया जाएगा, इस प्रकार के कंस के किसी भी भय से दूर होकर उन्होंने क्या करा, उस चंदन को भगवान श्री कृष्ण के शरीर पर लगाया। और भगवान ने क्या किया, भगवान ने उस कुब्जा को जिसका कि कमर जो था बिल्कुल इस तरह झुका हुआ था, बिल्कुल वृद्धावस्था में जैसे रखती थी, वो भगवान ने उसके पैरों पर अपने पैरों से उसके चरणों के पैरों को दबाया और अपने हाथों से उसके छोटी के नीचे हाथ रखा और उसको खींच दिया ऊपर की तरफ, है ना। क्या हुआ फिर, वो जो कुब्जा थी वो बिल्कुल सीधी हो गई और बहुत सुंदर भी हो गई। भगवान ने जो है ये पहला नहीं बोलना चाहिए, भगवान तो काफी कुछ कर चुके हैं। हम एक डॉक्टर के पास गए थे तो उन्होंने लिखा हुआ था कि फर्स्ट स्पाइनल कॉर्ड ऑर्थोपेडिक डॉक्टर इज कृष्णा, बिकॉज ये 5000 साल पहले उन्होंने जो है एक ऐसा ऑपरेशन किया था बिना किसी हेल्प के और बिना किसी उसके, तो कुब्जा को एकदम वो कर दिया। इसी रास्ते में भगवान को और कुछ भी इच्छा हुई थी क्या, बहुत सुंदर वस्त्र देखे उन्होंने, लेकिन जब उन्होंने इच्छा करी उस धोबी से कि मुझे दे दो पहनने के लिए, तो उस धोबी ने डांट कर कहा कि खबरदार, तुम्हें मालूम है कि किसके कपड़े हैं, अगर उन्हें पता चल गया तो ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, बड़ा बोला। फिर क्या किया था भगवान ने, क्या किया था है? वो एक मारा भगवान ने उसको, उसको वहीं पर धराशायी कर दिया। तो कई बार लोग कह सकते हैं भाई ये क्या मतलब है, भगवान ने एक को तो केवल चंदन लगाने से उसको इतनी बड़ी कृपा कर दी, और एक को बेचारा जो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा था, ड्यूटी तो कर रहा था, मान लीजिए आप कहीं नौकरी कर रहे हैं और अचानक भगवान आ जाए सामने आपको, जी वो कहें कि आप मेरे को ये दे दो, आपको कि भाई क्यों दे दूं, मेरी तो नौकरी है, मुझे तो कर्तव्य करना है अपना, है ना। भगवान ने गीता में बोला अपना कर्तव्य करो, व्यक्ति फंस जाएगा। लेकिन नहीं,
बताया जाता है कि जब अगर साक्षात भगवान या गुरुजन हमारे सामने उपस्थित हैं और वो हमसे कोई सेवा मांग रहे हैं तो उस समय हमारे को उस सेवा को तुरंत कर देना चाहिए। उस समय हमें रूल्स, रेगुलेशन, ड्यूटीज, इन सबकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। इसी प्रकार बताया जाता है शास्त्रों में कि जब भगवान की भक्ति की जाती है तो भगवान की भक्ति में हम लोगों को जो रूल्स रेगुलेशन हैं वो उसकी भक्ति को हेल्प करने के लिए, लेकिन अगर वो रूल्स एंड रेगुलेशन या वो ड्यूटीज भक्ति में आड़े आ रही है, भगवान के या गुरु के आदेश को पालन करने में आड़े आ रही है, तो उसको क्या कर देना चाहिए? तिरस्कार कर देना चाहिए और भगवान की इच्छा को पूरा करना चाहिए। यहां पर कुब्जा ने भगवान की इच्छा को पूरा किया, इसलिए उनको भगवान ने उनके ऊपर कृपा की। तो इस प्रकार जो है भगवान जो है ये यथा माम प्रपदन्ते तांस तथैव भजामि हम, अपने इस सेंटेंस को भगवान हमेशा पूरा करते हैं कि जो व्यक्ति जिस भाव से और जितनी मात्रा में मुझे सरेंडर्ड है, मैं उसको उसी भाव से और उतनी ही मात्रा में मैं क्या करता हूं, उसकी मदद करता हूं या उस पर कृपा करता हूं। हमारे पूरे के पूरे ग्रंथ जो हैं शास्त्र में भगवान और भक्तों के ऊपर की गई कृपा के ऊपर ही, और हम जानते हैं और हम देखते हैं कि जब जब भगवान के भक्तों ने भगवान को समर्पण किया है तो भगवान अपने को रोक नहीं सके, क्योंकि भगवान अपने भक्तों के द्वारा की गई भक्ति से बिक जाते हैं। भगवान कहते हैं कई जगहों पर कि जिस भक्त ने पूरा जीवन मेरे नाम का उच्चारण किया है, मेरी कथाओं का श्रवण किया है, ऐसा भक्त जिसे कुछ नहीं चाहिए और मुझे सरेंडर्ड है, मैं ऐसे भक्त के द्वारा बिका हुआ हूं। मेरा जिस प्रकार एक बैलगाड़ी उसके ऊपर जो चालक है उसके द्वारा पूरी तरह कंट्रोल में होती है, उसी पर वो भवन कह रहे हैं मैं अपने भक्तों के द्वारा बिका हुआ हूं। इसलिए जब जब भगवान के भक्तों के ऊपर, शुद्ध भक्तों के ऊपर कोई कष्ट आता है तो भगवान इंतजार करते हैं पहले तो कि कब जो है मेरा भक्त मुझे पुकारे, और नहीं भी पुकारते तो भी भगवान मदद करने के लिए पहुंच पड़ते हैं। हरिदास ठाकुर जी को 22 बाजारों में पीटा जा रहा था और भगवान ने तो अपना सुदर्शन चक्र भी भेज दिया था सब लोगों को मारने के लिए, लेकिन हरिदास ठाकुर जी एक ही बात कह रहे थे कि भगवान इन सबको माफ कर देना, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। फिर क्या था, वो सुदर्शन कुछ कर ही नहीं पा रहा था, और इस वजह से भगवान जो है बहुत द्रवित हो गए कि मैं कैसे इस भक्त की मदद करूं। जनरली हमारे साथ कोई दुख हो के कष्ट, हम तुरंत जो है डॉक्टर्स के पास जाते हैं, ऐसे लोगों के पास जाते हैं जो हमें बचा सके, या कई बार भगवान के पास भी आते हैं तो फिर यही बोलते हैं कि हमें इस कष्ट से बाहर निकाल दो। कितना बड़ा डिफरेंस है एक शुद्ध भक्त की चेतना में और हम जैसे सकाम भक्तों की चेतना में। हम लोग तुरंत भगवान से अपने कष्टों को दूर करने की बात करते हैं और भक्त क्या कहते हैं, हे भगवान हमें और कष्ट दो, विपदा संतुदा शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शना दिशा पुनर्भवन दर्शन, कि हमारे ऊपर और दुख आए और कष्ट आए। क्यों? क्योंकि जब ऐसे दुख और कष्ट आते हैं तो ऐसे समय पे हमें आपका स्मरण होता है, आपके लिए सुंदर प्रार्थनाएं निकलती हैं और आपका दर्शन कर पाते हैं, और ये एक ऐसा माध्यम है भगवान की प्रार्थना करना, भगवान का दर्शन करना, कि एक बार अगर हमने कर लिया तो फिर दोबारा हम लोगों को इस भव सागर का दर्शन नहीं करना पड़ेगा। नहीं तो पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम, बार बार डिमांड्स करेंगे, इच्छाएं करेंगे, फिर से मरेंगे और फिर से जन्म लेना पड़ेगा। इस प्रकार हम लोग इस संसार में बार बार आते रहे। रूपा जी कहा करते थे केवल एक लाइफ टाइम अगर हम लोग भगवान को पूरी तरह समर्पित हो जाएं। समर्पण का मतलब है कि अपनी इंद्रियां, अपना मन, अपनी बुद्धि, अपना सब कुछ, मानस देह गेह जे किछु मोर अर्पिलितो आपदे नंद किशोर, कि हमें मान, अपना देह, अपना घर, अपना परिवार, अपने डिपेंडेंट्स, जो भी कुछ हमारे पास है उसे हमें भगवान को अर्पित कर देना चाहिए एक लाइफ टाइम। क्या होगा उससे? उसके बाद नो मोर लाइफ टाइम। नहीं तो कितने कितने जन्मों से हम लोग इस संसार में बार बार जन्म लेने के बाद उन सारे कष्टों को झेल रहे हैं। भागवतम में कह रहे हैं कि जब जब व्यक्ति जिस जिस योनि में जन्म लेता है उसको उससे प्यार हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति को फिर से एक नया सेट ऑफ फैमिली मिलता है, माता पिता, बहन भाई, पत्नी बच्चे, और इनके बीच में रहते रहते अपनी इच्छाओं को पूरा करते करते कुछ समय के बाद वो व्यक्ति अपने को सिक्योर समझता है कि इनके बीच में मैं सिक्योर हूं और यही मेरा सब कुछ है, यही मेरा संसार है। और फिर चाहे वो किसी भी योनि में हो, जिस प्रकार एक बार ब्रह्मा जी ने जब देखा कि इंद्र का पद खाली पड़ा है तो अपनी दिव्य दृष्टि से देखा, कहां थे वो इंद्र? पृथ्वी लोक में स्वर्ग की योनि में थे। और उनसे आके कहा कि तुम यहां पर क्या कर रहे हो, चलो वापस वापस अपने लोक में जहां पर कि आनंद ही आनंद है ना, तुम राजा हो वहां के, सोमरस इत्यादि का तुम पान करते थे। कहते अच्छा, बट उन्होंने जाना मंजूर नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये जो मेरी फैमिली है इतनी बड़ी, जिनके साथ मैं रोज सुबह दोपहर शाम वॉक पे जाता हूं, खाता हूं, घूमता हूं, डिनर करता हूं, आउटिंग करता हूं, किटी पार्टीज में जाता हूं, ये मेरे साथ चलेंगे क्या? उन्होंने कहा नहीं, इनकी एंट्री थोड़ी है, मैं तो आपकी बात कर रहा था। कहता है सॉरी, मैं नहीं जा सकता। तो जिस भी योनि में जीवात्मा जाता है, उस देह से और उस देह से संबंधित लोगों से उन्हीं को सब कुछ मान बैठता है। और इसकी वजह से क्या होता है, उसका जो मोह है, उस मोह के कारण वो कभी इस जगत से बाहर नहीं निकल पाता। केवल सो कॉल्ड मटीरियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिम्मेदारियां, ड्यूटीज के नाम पर वो व्यक्ति इसके क्या कहते हैं आवरण, इसका आवरण कर वो इससे बाहर नहीं निकलना चाहता और उन्हीं लोगों का संग करता है या उन्हीं लोगों तक जाता है जहां पर कि इसी तरह की बातें की जाती हैं। हाँ, ड्यूटी तो बहुत जरूरी है, जिम्मेवारी बहुत जरूरी है, व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाता। कम से कम हर व्यक्ति को अपने जीवन का लक्ष्य पता होना चाहिए, मेरे जीवन का असली उद्देश्य क्या है। हो सकता है कि हमारी परिस्थिति, वर्तमान परिस्थितियां ऐसी ना हो कि हम सब कुछ छोड़कर भगवान की शरण में जा सकें, लेकिन भगवत गीता और भागवतम के अनुसार और प्रमाणिक गुरु और साधुओं के अनुसार अगर हम उनकी शरण में रहकर उनकी आज्ञाओं का उस परिवार में ही रहकर पालन भी करते रहे जैसे कि बताया जा रहा है, तो भी व्यक्ति घर बैठकर सन्यासी हो सकता है ना। जिस प्रकार के कॉलेजेस में एक फुल टाइम कोर्स होता है और एक कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स होता है ना, तो घर बैठे भी लोग एमबीए कर लेते हैं, टीचर बन जाते हैं, तो उसी तरह उसकी भी बराबर वैल्यू है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति घर में रहकर अपने परिवारजनों के साथ रहता है, लेकिन ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार की कमल का फूल कीचड़ में रहते हुए भी सदैव उसकी गंदगी से टच में नहीं रहता, उसी प्रकार जो लोग सदैव भगवद्गीता भागवतम का अध्ययन करते हैं और आश्रम में रहते हैं, अर्थात गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, अर्थात गुरु के संरक्षण में रहते हैं और सदैव आत्म साक्षात्कार करने का प्रयास करते हैं, तो उस घर में अपनी सो कॉल्ड जिम्मेवारियों को पूरा करते हुए डिटैच वे में उन्हीं जिम्मेवारियों को हमारे भक्त भी उसी तरह पूरी करते हैं और वो करते करते व्यक्ति आसानी से भगवत धाम जा सकता है। लेकिन यही जिम्मेवारियां पालन करते करते लोग फिर से पुनरअपि जन्म के चक्कर में पड़ सकते हैं। खाना पीना सब कुछ वैसे ही करना है और एक भक्त के रूप में उसको हर चीज बड़े कंट्रोल्ड वे में करनी है। इतना ही अंतर है भक्त में और अभक्त में। जिस प्रकार अर्जुन ने युद्ध किया लेकिन उसके फल से आवश्यक नहीं था क्योंकि अब भगवान की तरफ से आज्ञा आ चुकी थी कि तुम इसको युद्ध करो, मैं तुम्हें बोल रहा हूं और इस प्रकार इन सबको मैं मार चुका हूं। तो अर्जुन ने जो है उसी तरह किया और अंत में आज तक भगवान जो है अर्जुन साथ साथ हैं, एटर्नल पोजीशन है उनकी। हम पहले भी थी, ऐसे नहीं कि वो युद्ध करके हुई, पहले से उनके एसोसिएट्स हैं वो। तो इस प्रकार जो है हम बता रहे थे कि ये जो लीला थी माधवेंद्रपुरी की, इसमें और हमें यह अंतर है कि एक जो प्रभुपट में भी बता रहे हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कि सन्यासी जो है वो या ब्राह्मण जो है वो कोई भी व्यक्ति बन सकता है। श्रील प्रभुपाद जी ने जो है साफ साफ इस बात को डिक्लेयर किया, जब विदेशों में गए तो वहां पर उन्होंने जब जिस तरह के लोगों से मिले, वहां पर ऐसा नहीं था कि ब्राह्मण कल्चर के थे या ऐसा नहीं था कि उन लोगों ने पूछा एक बार कि क्या हमारी भी सुकृतियां हैं भक्ति करने की, तो प्रभुपाद ने कहा नहीं, ये सुकृतियां मैंने तुम्हें प्रदान की। तो उनको इतना सुंदर कल्चर दिया, उन्हें ब्राह्मण तक बनाया, संन्यास तक दिया, उनकी शादियां तक कराई प्रभुपाद ने। एक सन्यासी को शादी कराना अलाउ नहीं है, लेकिन प्रभुपाद ने उन सब नियमों को प्रचार के लिए जो है पीछे रखा और उन नियमों का पालन करते हुए शादी तक कराई प्रभुपाद ने। और फिर वही ब्राह्मण लोग, वही लोग आज सन्यासी भी हैं, पूरे संसार भर में देख सकते हैं। जब वो वृंदावन आए तो वहां के लोगों ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया, जात गोस्वामियों ने, समाज ब्राह्मणों ने उनकी निंदा इत्यादि की, भाई ब्राह्मण कुल में तो हम पैदा हुए हैं, ब्राह्मण या सन्यासी या वैष्णवता तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इन लोगों का कैसे हो सकता है? ये शूद्र रहे हैं, खाने पीने वाले रहे हैं, क्या क्या मांस भक्षण इत्यादि नहीं कर रहा, यवन है, मलिच है, ये लोगों को कैसे तुमने सन्यासी बना ली? तो प्रभुपाद जी फिर इस तरह की बात कोट करते थे, जो कि भक्ति सिद्धांत महाराज जी ने भी कोट की थी, कि वह विप्र कीवा न्यासी शूद्र के निनाय यही कृष्ण तत्ववेत्ता सही गुरु है। कि किस प्रकार अगर कोई व्यक्ति किसी भी जन्म में कुल में पैदा हुआ है, लेकिन अगर उसके अंदर ब्राह्मण के गुण हैं, तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति पूजनीय है, सन्यासी बनने के लायक है, या पूरे संसार को में शिष्य बना सकता है। तो इस तरह जो है इस कथा में, माधवेंद्रपुरी की कथा में भी हम जानते हैं, देखा कि जिस प्रकार भगवान के प्रति उनका जो भाव था, एक बहुत उत्कृष्ट भक्त थे और गोवर्धन में रह करते थे, और भगवान ने स्पेशली ऐसे भक्त के ऊपर कृपा कर उनको अपना दर्शन दिया, सपनों में भी आए और उनके साथ आदान प्रदान किया। तो अब इस लीला में जो है हम देखेंगे कि जो ये जो लीला जहां समाप्त हुई, कि भगवान का जो चंदन यात्रा का फेस्टिवल आज हमारे पूरे विश्व भर के मंदिरों में मनाया जा रहा है, और हमारे पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग भी, चाहे किसी भी बैकग्राउंड से हैं, अगर यहां पर आके स्वच्छ मन से भगवान की सेवा के लिए चंदन भेजते हैं, तो वो सेवा भगवान को एक्सेप्ट होती है और भगवान के शरीर पर जो है उसका लेप भी लगता है। तो भाग्यशाली है वो भक्त लोग जो इस प्रकार की सेवा करते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। कोई प्रश्न या जिज्ञासा है इससे संबंधित? ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत की, श्रील प्रभुपाद की। गीताय गौर प्रमाणम प्रभुपाद की।